खुदावंद में आप सब बहन भाइयों को आज की सुबह में मेरी तरफ से और सारी टीम की तरफ से सलाम पेश हो और खुदावंद की तारीफ हो कि उसने आज का दिन हम सबको फिर बख्श दिया कि हम सब मिलकर उसकी प्रस्तुति करें और उसकी इबादत करें। और जैसे हमने खुदावंद के कलाम में ये गीत ये जबूर गाया, खुदा कहता है सिखावांगा तेनू वखावांगा रा मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। सो आए हम खुदा के हजूर झुकें और खुदा को पुकारें और उससे कहें कि खुदा बाप तूने वादा किया है कि मैं तेरी राहों को दुरुस्त करूंगा, इसलिए तू अपने अकल अपने इलम पर भरोसा ना कर। सो खुदा बाप से दुआ करेंगे कि ताकि जो कुछ आज हम सीखें आज सारे दिन में हम सब की तरबियत और नसीहत और बरकत और कुदरत का बायस ठहरे। सो इस बात को याद रखते हुए खुदा उनके हुजूर झुकेंगे। खुदा बाप तेरे इस खानदान के लिए, तेरे लोगों के लिए, बेटों और बेटियों के लिए खुदावन तेरा शुक्र हो। आज के कलाम के हिस्सा को ले और खुदावन मुझ खाकसार के लोगों को अपने जलाल और अपने लोगों की तरबियत और नसीहत के लिए दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल कर ताकि खुदावंद इस जमीन पर रहते हुए तेरे बारे में सीखें, ताकि तुझे धनबाग कहने वाले बने और तेरी प्रस्तुति और इबादत रूह और सच्चाई से करने वाले बने। सो आज हमारी दुआ को सुन कबूल कर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। जैसा कि आप सब जानते हैं हम नए अहदनामा में से पालूस रसूल का खत जो इफ्सियों के नाम लिखा गया उसमें से सीख रहे हैं। सो मेरे साथ निकालें जो बहन भाई बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं, इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका पहला बाप उसकी 13वीं आयत। और इस आयत में जैसे मैंने आपको कल बताया बहुत गहरी सच्चाइयां छुपी हुई हैं और खुदा ने चाहा तो हम इस आयत में से कम एक महीना सीख सकते हैं, एक महीना। सो मैं चाहूंगा कि इस आयत को मेरे साथ पढ़ें और इसके बाद फिर हम चंद एक बातें सीखेंगे। और यहां पर खुदा का बंदा पालूस कहता है और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मोहदे रूप की मोहर लगी। यहां पर हम सीख चुके हैं कि उसी में यीशु मसीह है। जब तुमने यानी के वो तमाम लोग जो यीशु मसीह के कलाम को सुनते हैं उस पर यकीन करते हैं तो उनको क्या मिलती है, निजात मिलती है। पालूस रसूल कहता है कि जब तुमने खुशखबरी को सुना, आपने कहीं ना कहीं से खुदा के कलाम में से खुदा के कलाम को सुनाते हुए किसी ना किसी खादम से सुना होगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया है तुम्हारे गुनाहों के कफारे के लिए, तो आपने यकीन किया। तो पालूस कहता है कि तुम्हें निजात मिली तब जब तुमने उस पर ईमान रखा। सो आज मैं चाहूंगा कि हम इस हिस्से को सीखें और इसमें से गहरी बातें उन भेदों को जानें जो खुदा के कलाम में पालूस रसूल ने लिखी हैं रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में। आज हम इस आयत के आखिरी हिस्सा को सीखेंगे। पाक मौदे रूह की मोहर लगी। मौदे से मुराद यानी के लफ्ज यानी के पाक रूहुल कुद्दस की मोहर लगी। आज हम देखेंगे कि पालूस रसूल ने क्यों लफ्ज मोहर लगी का इस्तेमाल किया, पालूस रसूल ने क्यों ये जबान इस्तेमाल की। आज हम इसका तारीखी तौर पर जायजा देखेंगे कि तारीख इसके बारे में क्या बयान करती है कि जब किसी चीज पर किसी जगह पर मोहर लगाई जाती थी तो उसका क्या मतलब था। और पालूस रसूल यहां पर जेल में है और उसने ये जेल की हालत में, कैद की हालत में ये यब खत लिखा, तो उसने क्यों लफ्ज मोहर का इस्तेमाल किया? और वो कहता है कि रूहुल कुद्दस की मोहर ईमानदारों पर लगी। जब हम इसे देखते हैं तारीखी लिहाज से, जब कोई अहम कागजात या दस्तावेज, किसी बादशाह के दस्तावेज या कागजात किसी दूसरे बादशाह को भेजे जाते थे, तो उस पर उस बादशाह की मोहर लगाई जाती थी कि सिर्फ जिस तक पहुंचे, जिसके नाम पर वो दस्तावेज या खत या क्या कागजात लिखे हैं, वही उसे खोले। और हम इसे बाइबल मुकद्दस में देख सकते हैं। आपको याद होगा मेरे साथ इस हवाला को पढ़ें। मैं चाहता हूं कि इस हिस्सा में से हम और बहुत गहरे तौर पर सीखें और आपको समझ आएगी कि क्यों पालूस रसूल ने लफ्ज मोहर का इस्तेमाल किया। मेरे साथ देखें मत्ती की अंजील उसका 27वां बाप और उसकी हम 42वीं आयत से 66 62 आयत से लेकर 66 आयत तक पढ़ेंगे। और यहां पर हम मोहर का जिक्र सुनेंगे और फिर उस पर बात करेंगे कि क्यों मोहर लगाई गई। तो यहां पर यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब कर दिया गया है। यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब करने के बाद कब्र में रखा जाएगा। सो यीशु मसीह ने एक दावा किया था, आप सब उससे वाकिफ हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम, मैं इस मकसद मकदस को ढा दूंगा और फिर तीसरे दिन उसे खड़ा कर दूंगा। तो यहां पर वही बात होने वाली है, इसलिए यहां पर लिखा है 62 आयत में। 62 से मुराद यानी के 62 आयत तो सी पढ़ांगे। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिन और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावन हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। यहां पर फकी फरीसी पिलातुस के सामने खड़े यीशु मसीह को धोखेबाज कह रहे हैं, अपनी बात मनवाने के लिए, अपने आप को सच्चा ठहराने के लिए। और वो उस बात को याद करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। सो 64 आयत, पस हुक्म कर दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगाहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिगिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोग ये कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। यहां पर फकी फरीसी इस बात के डर में है कि यीशु मसीह जी उठेगा और फिर उसके शागिर्द कहेंगे कि वो मुर्दों में से जी उठा और लोग उसकी और ज्यादा मानेंगे। और अगले हिस्से में क्या लिखा है, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सकता है उसकी निगाहबानी करो। यहां पर जब हम देखते हैं रूमी हुकूमत में, रूमी हुकूमत की उस वक्त की फौज इतनी जोरावर थी, इतनी ताकतवर थी, वो दिन रात सोते नहीं थे, उनको जो तैयार किया जाता था वो बहुत आला तरीके से तैयार सिपाही होते थे। और उस दौर के मुताबिक रूमी हुकूमत की फौज बहुत ताकतवर थी, कोई भी उनके पहरे को तोड़ नहीं सकता था। तो फरीसियों ने क्या कहा रूमियों से कि अपने सिपाही भेज दे। और गौर करें अगली आयत पर, बस वो पहरे वालों को साथ ले गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगाहबानी की। पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगाहबानी की, यहां पर हम सीखेंगे कि क्यों उस पर मोहर की गई। اس وقت رومی دور کے مطابق ان کی مہر یعنی کہ ان کا اختیار تھا، اور اس مہر کو اس لیے قبر پر لگایا گیا کہ کوئی بھی رومی حکومت کے خلاف سر نہ اٹھائے اور اس پہرے کو نہ توڑے۔ اور آج ہم اپنے دور میں بھی دیکھتے ہیں، جب کوئی دکان یا جب کوئی مکان اپنے پیسے نہیں اتارتا تو ہماری بھی حکومت کیا کرتی ہے، آتی ہے تالا لگا کر اس پر لال رنگ کی جسے کہتے ہیں کہ موم بتی یا سیل لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دکان یہ مکان گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کھولے گا نہیں، اگر کوئی کھولے گا تو اسے کیا ملے گی، سزا ملے گی۔ اسی طرح یہاں پر بھی انہوں نے یسوع مسیح کی قبر پر مہر کی، اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، خدا کا فرشتہ ظاہر ہوا، قبر کا پتھر ہٹ گیا اور مہر توڑ دی گئی، کیونکہ خدا ساری قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ سو سکھانا کیا چاہتا ہوں کہ روح القدس کی مہر جو ہم پر لگی ہے، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں روح القدس کی مہر ہم پر لگ جاتی ہے، اور مہر اس بات کی، اس کے بارے میں اور سیکھیں، مہر اس بات کی قدیم دور میں اور موجودہ دور میں کیا کرتی ہے، بات ظاہر کرتی ہے کہ کوئی اس کا مالک ہے۔ جس طرح کہ بہت دفعہ ہمارے زمین کے جو کاغذات ہیں ان پر مہر لگائی جاتی ہے گورنمنٹ کی، اور وہ کاغذات ہمارے نام کر دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی دیکھے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی لطیف اتنے مربوں یا اتنے کلوں کے مالک ہیں، یا بھائی طاہر اس چیز کے مالک ہیں، یا بھائی جوید اس چیز کے مالک ہیں، تو اس پر مہر کر دی جاتی ہے۔ سو ہم پر خدا نے مہر کی ہے روح القدس کی، اس لیے کیونکہ ہم اس کی کیا ہیں، جاگیر ہیں، ہم خدا کے کیا ہیں، لوگ ہیں، اور اس دنیا کی کوئی بھی طاقت اس مہر کو، اس اختیار کو توڑ نہیں سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب میں کیا کہا گیا تھا کہ اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سو مہر کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا آج سیکھا ہے، یہ اس لیے کیونکہ ابلیسی قوت ہمارے اندر داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم خدا کے پاک روح کی کیا ہیں، سکونت گاہ ہیں، رہنے کی جگہ ہیں، خدا کا مقدس ہیں، خدا کے بہت ہی عظیم لوگ ہیں۔ سو ہم اس آیت پر، اس آیت میں سے ہم سیکھیں گے روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں، روح القدس کی معموری کے بارے میں، روح القدس کی مہر کے بارے میں، روح القدس کی موجودگی کے بارے میں، روح القدس کے پھلوں کے بارے میں، روح القدس کے ناموں کے بارے میں، روح القدس کے کیا کیا کام ہیں، روح القدس کے کیا کیا نام ہیں، روح القدس پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں۔ سو ہم اس آیت میں بہت زیادہ سیکھیں گے، اس لیے کوشش کریں، اگر لکھ سکتے ہیں تو حوالہ جات لکھنا شروع کریں، ہم آنے والے دنوں میں اس میں سے یہ سیکھیں گے۔ کیوں روح القدس کے بارے میں ہم سیکھیں گے؟ کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے روح القدس ہمیں مددگار کے طور پر دیا گیا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، ہمارا سکھانے والا ہے، ہمارا رہنما ہے۔ سو آپ پر مہر اس لیے ہوئی ہے کیونکہ آپ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے علیحدہ کیے ہوئے، ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ ابلیس آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا خدا کی مرضی کے بغیر۔ آپ کو یاد ہوگا ایوب کی زندگی کا واقعہ، جب شیطان نے سارا کچھ دیکھا، اس کی خوشحالی، اس کا مال دولت سب کچھ دیکھا، تو اس نے خدا سے اجازت مانگی کہ مجھے اسے چھونے دے۔ کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کیا کہا تھا، کیونکہ تو نے اس کے گرد، شیطان خدا کو کہہ رہا ہے کہ تو نے اس کے گرد محافظت کی کیا لگائی ہوئی ہے، روح القدس کی آگ کی باڑ لگائی ہوئی ہے، وہی روح القدس کی مہر ہم پر لگی ہوئی ہے، और ये इस बात की जमानत है कि हम उसके लोग हैं। इसलिए आप इस जमीन पर बहुत अहम, बहुत दौलतमंद रूहानी तौर पर लोग हो। आपकी खुदा के सामने बहुत ज्यादा अहमियत है और हम रूहुल कुद्दस के बारे में सीखेंगे ताकि आप किसी और को बताने वाले बने कि रूहुल कुद्दस हमें कब मिलता है, रूहुल कुद्दस की हमें क्या क्या नेमते हासिल हैं। सो आए आज हम खुदा के हजूर झुकें और अपने पैगाम को खत्म करें और आइंदा दिनों में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को लाएं, क्योंकि रूहुल कुद्दस की खिदमत के बारे में जरूरत है कि हम सीखें। आए हम खुदा के हजूर झुकें। खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने रूहुल कुद्दस की मोहर हर उस बेटी बेटे पर की है जो तेरे बेटे यसु पर ईमान रखता है कि उसका नजात दहिंदा है। सो आए हुए तमाम खानदानों को छू, बड़ी बरकत दे और आज के कलाम को तू समझने की और कबूल करने की कुव्वत और ताकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।